अध्याय 11 प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहासकार क बाढ़ हर्षचरित। बाढ़ भट्ट एवं हर्षचरित की ऐतिहासिकता। भारतीय ऐतिहासिक लेखन के चौथे वर्ग का प्रतिनिधित्व मध्यकालीन जीवन चरित लेखक बाढ़ करते हैं। हर्षचरित एक समसामयिक लेखक द्वारा प्राथमिक ज्ञान पर आधारित एक शासक विशेष से संबद्ध इतिवृत्त है। एक इतिवृत्तकार के रूप में बाढ़ के मूल्यांकन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उसकी कृति प्रामाणिकता एवं अन्य साक्ष्यों से भी सिद्ध होती है और इस कारण इसे हर्ष के प्रारंभिक जीवन पर लेख का प्रामाणिक साक्ष्य स्वीकार किया जाता है। किंतु इतिवृत्तकार के साथ साथ बाढ़ कवि भी था। उसमें स्थित कवित्व के कारण ही हम कहीं कहीं मानवीय कार्य व्यापारों में दैवी हस्तक्षेप स्वप्नों के साथ सत्य होने में विश्वास तथा चमत्कारिक कार्यों के अस्तित्व की चर्चा पाते हैं। कहीं कहीं काव्यात्मक चातुर्य के प्रकाशन की प्रबल आकांक्षा के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं गौण हो गई दिखाई पड़ती हैं। परंतु डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक ने बाढ़ के हस्तचरित के अध्ययन की ऐतिहासिकता को एक नए दृष्टि से प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण अग्रिम पंक्तियों में होगा। परंतु महाकवि बाढ़ के वंश परंपरा का अध्ययन भी ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से इतिहास लेखन पर प्रकाश डालता है, जो प्राचीन दीर्घकालीन भृगुवांगिरस परंपरा को बाढ़ के साथ संबद्ध करती है, जिसका संक्षिप्त विवरण अनुवर्ती पंक्तियों में प्रस्तुत है। बाढ़ की वंश परंपरा। भारत के प्राचीन इतिहासकारों के शैली में बाण स्वयं अपने उत्पत्ति के संबंध में भार्गव ब्राह्मणों की वात्सायन पंक्ति का विवरण देते हैं, जिस वंश से वे स्वयं संबद्ध थे। हर्षचरित में बाण ने लिखा है कि च्यवन ब्राह्मण से क्षत्रिय राजकुमारी दधीची की उत्पत्ति हुई थी और इसी दधीची का ज्ञान की देवी सरस्वती का पुत्र सारस्वत था। सारस्वत ने अपने चचेरे भाई वत्स के लिए प्रतिकूट नामक गाँव च्यवन आश्रम सोनतट की सीमा में बसाया। ब्राह्मणों की बस्ती प्रधानता होने के कारण इसे ब्राह्मणाधिवास भी कहा है। यही प्रतिकूट ब्राह्मण प्रतिकूट बाढ़ का जन्म स्थान था। दधीची का एक ब्राह्मण बंधु की पत्नी अक्षरमाला से वत्स नामक पुत्र को जन्म को उत्पन्न किया। जब सरस्वती देवलोक को चली गई, तब अक्षमाला ने सारस्वत और वत्स दोनों का पालन पोषण किया। हर्षचरित प्रथम उच्छ्वास इसी वत्स ने वात्सायन वंश का प्रादुर्भाव किया। बाण के इस कथन से यह स्पष्ट संकेतित है कि बाण ने इस कथा के द्वारा यह व्यक्त किया है कि बाण भार्गव पंक्ति का वात्सायन ब्राह्मण था। इस प्रकार के ब्राह्मणों का अस्तित्व ज्ञान 7वीं शताब्दी ईस्वी के अभिलेखों में भी होता है। हर्षचरित के एक दशक पूर्व जोधपुर के दधि माता मंदिर अभिलेख में उल्लेख है कि दध ब्राह्मणों का जो अभिलेख में उल्लेख हुआ है, उनका समीकरण उस क्षेत्र के दधीच ब्राह्मणों से किया जा सकता है, जिनकी 6 उपजातियां दधीच, सारस्वत, गौण, गुर्जर, पारिक तथा शिखावाला थी। अभिलेख में 14 ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जो सभी वत्स गोत्रीय हैं। ये सभी दधीच ब्राह्मण आज भी अपनी उत्पत्ति को ऋषि दधीची से जोड़ते हैं। उनके बीच में प्रचलित यह परंपरा है कि दधीची अथर्वन का पुत्र था, जिसका विवाह वेदवती से हुआ था, जिससे पिल्लाद नामक पुत्र उसके मरणोपरांत उत्पन्न हुआ, जिसमें 14 पुत्रों में एक वत्स भी था। परंतु यह परंपरा हस्तचरित में वर्णित परंपरा से इस बिंदु पर भिन्न है कि प्रचलित परंपरा में दधीची को अथर्वन का पुत्र कहा गया और हर्षचरित में उसे च्यवन का पुत्र कहा गया है। दोनों परंपराओं के पैतृक विवरण की अन्वेषणा वैदिक काल के संदर्भों में की जा सकती है। वैदिक परंपरा में सामान्यतया दधीची को अथर्वन से संबद्ध किया गया है। पंचविंश उसे च्यवन का उत्तराधिकारी मानता है। बौद्धायन भृगुओं के अंतर्गत दधीची को परिगणित करता है। संक्षिप्ततः बाण की तरह ये दधीची सारस्वत समूह तथा भार्गव पंक्ति के वत्स गोत्र से संबद्ध है। दधि माता मंदिर का अभिलेख संकेत करता है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में इनकी राजस्थान में विद्यमानता थी। भार्गव के वत्स गोत्र से संबद्ध होने के कारण बाण के 5 प्रवर भार्गव, स्वयं, आपनुवान, औद्र तथा जामदान्य अवश्य होंगे। पूर्व मध्य काल में पूर्वी भारत में इस समूह के ब्राह्मणों का निवास था। कम से कम सेन राजवंशों के विजय सेन से लेकर के विश्वरूप सेन तक के अभिलेखों तथा धाम रूप के नरेश नेपाल के ताम्रपत्र में इनका उल्लेख हुआ है। ये वात्सायन ब्राह्मण भृगवांगिरसों के एकीकृत परिवार से संबद्ध थे, जिनका इतिहास उत्तर वैदिक काल से हर्ष तक गत पृष्ठों में उल्लिखित है। हर्ष चरित में बाण का चचेरा भाई श्यामल भार्गव पंक्ति से गौरवान्वित होने का उल्लेख करता है। परंपराओं में दधीची को भार्गव, अथर्वन और आंगिरस से संबद्ध किया गया है। बौद्धायन दधीची को भृगो के अंतर्गत स्वीकारते हैं, जबकि ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में दधीची को अंगिरस कहा गया है। महाभारत में इसे अंगिरस एवं भार्गव दोनों का प्रतिनिधि कहा गया है। भृगवांगिरसों का यह संवित परिवार इतिहास पुराण परंपरा से विशेषता और निकटता संबंध था। दधीची तथा भार्गव का यह संबंध बाढ़ के काल में भी परंपरागत रूप से चला आ रहा था। दधीची के दधी माता अभिलेख का एक अंश मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में प्राप्त है। देवी महात्म्य का यह उल्लेख दधीची और मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य को सहसंबद्ध करता है कि दोनों का पारस्परिक परंपरागत संबंध रहा होगा। बाढ़ के चारों चचेरों के संबंध में हर्षचरित में लिखा है कि वे पुराण के ऋषियों और राजाओं के कृत्यों से भिज्ञ थे। ये महाभारत और इतिहास से प्रेरित मस्तिष्क वाले थे। हर्षचरित में उल्लेख है कि बाढ़ के परिवार में वायु पुराण का पाठ सुदृष्टि द्वारा किया जाता था। यह संकेतित है कि पुराणों का प्रभाव बाढ़ परिवार पर था। भार्गव परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी ध्यातव्य है कि पूर्व मध्यकाल तक उनमें धर्मशास्त्र और नीति राजनीति के विशेष ज्ञाता की परंपरा विद्यमान थी। डॉक्टर पाठक मनुस्मृति को भार्गव ग्रंथ स्वीकारते हैं तथा महाभारत में धर्मशास्त्र तथा नीति से संबंधित अध्यायों को भार्गव की रचना मानते हैं। दसवीं और ग्यारहवीं सदी में बंगाल के सेन वंशी शासकों द्वारा ईशान देव एक विश्वरूप नायक भार्गव ब्राह्मणों की नियुक्ति नीति पाठक के रूप में किया गया था। हर्षचरित के रचना में भार्गव की पारिवारिक परंपरा का प्रभाव बाढ़ पर पड़ा था, क्योंकि श्यामल हर्षचरित को दूसरा महाभारत कहता है, जबकि मंत्री सूत्री बाढ़ ने इसकी तुलना वायु पुराण से की है। इस प्रकार दधीची और सरस्वती की कथा हर्षचरित के इतिहास पुराण परंपरा के संरचनात्मक स्वरूप को प्रकट करती है। भार्गव वंश परंपरा की अन्य विशेषता यह दिखाई देती है कि इनका संबंध राजनीति से रहा है। जैसा कि हर्षचरित में सिंहनाद तथा स्कंदगुप्त के राजनीति एवं राजकीय व्यवहारों पर दिए गए संभाषणों में प्रतिबिंबित है, इस प्रकार हर्षचरित के लेखक बाढ़ भी भृगवांगिरस शाखा के भार्गव वंश और वत्स गोत्र से संबद्ध थे। हर्षचरित में बाढ़ के पूर्व वंशों एवं पूर्वजों का जो विवरण प्राप्त है, उससे यह ज्ञात होता है कि हर्षचरित के अनुसार बाढ़ ने अपने पूर्वजों का जो उल्लेख किया है, उसमें कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु एवं बाढ़ का क्रम है। यद्यपि यह क्रम कादंबरी से आवांतर भिन्न है। हर्षचरित एवं बाढ़ रचित हर्षचरित सातवीं सदी कान्यकुब्ज के शासक हर्ष पर लिखी एक आख्यायिका है। बाढ़ भार्गव कुल का था तथा इतिहास में रुचि उसे अपने पारिवारिक परंपरा से प्राप्त हुई रही होगी, ऐसा सोचा जा सकता है। हर्षचरित इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य की श्रेणी में आता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी से काव्य उस क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई पड़ता है जो पहले इतिहास का क्षेत्र माना जाता था। इतिहास लेखन पर इस प्रवृत्ति के गंभीर प्रभाव पड़े। इन ऐतिहासिक काव्यों में प्रत्यक्ष तथ्य संप्रेषण के स्थान पर अप्रत्यक्ष तथा लक्षणात्मक अभिकथन मिलते हैं, परंतु डॉक्टर पाठक ने हर्षचरित के ऐतिहासिक घटनाओं को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि अब तक विद्वानों की जो यह मान्यता रही है कि हर्षचरित एक अधूरी रचना है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि बाढ़ ने हर्षचरित की रचना सायास हर्ष के सिंहासनों सिंहासनारोहण प्राप्ति के राजनैतिक प्रयोगों के फलागम की दृष्टि से लिखा है। इतिहासकार वस्तुतः किसी घटना और विचार को अपने अनुकूल वैचारिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करता है। इस प्रस्तुतिकरण में बाल ने मध्यकालीन गद्य काव्य परंपरा को समेटते हुए हर्ष के सिंहासनारोहण को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हर्षचरित में महाभारत के संवाद पद्धति को भी स्वीकार किया गया है और इतिहास पुराण परंपरा के रूप में हर्षचरित में हर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। हर्षचरित का प्रभाव। बाण ने हर्षचरित के रचना में प्राचीन वैदिक आख्यानों को प्रसंगता नहीं अपितु अपनी वंश परंपरा की प्राचीनता को प्रस्तुत करने की दृष्टि से स्वीकारा है। महाभारत मत्स्य पुराण विष्णु पुराण के आख्यानात्मक संदर्भों के साथ भृगवांगिरस की ऐतिहासिक परंपरा के रूप में हर्षचरित का विधायन किया है। दधीची एवं सरस्वती की कथा न तो वैदिक और न पौराणिक साहित्य में प्राप्त है। तलवकार ब्राह्मण दधीची के पिता च्यवन ऋषि का उल्लेख सरस्वती तट पर किया गया है, परंतु महाभारत में यह कथा कतिपय परिवर्तनों के साथ वर्णित है। यही कथा हर्षचरित में बाण ने परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथमतः ऋषि क्षत्रिय राजकुमार के रूप में प्रस्तुत हैं। द्वितीय यह कि सरस्वती दुर्वासा के शाप से इस लोक में अवतरित हुई और शाप मुक्ति पुत्रोत्पन्न होने के बाद ही होगी, ऐसा ब्रह्मा ने उससे कहा। इस कथा का प्राचीन संदर्भ पुरुरवा ऋषि के आख्यान से द्रष्टव्य है। हर्षवर्धन द्वारा रचित तीन नाटकों में से रत्नावली एक सुखांत नाटक है, जिसमें राजा उदयन सिंहासन प्राप्ति के लिए एक कल्पित कथा रची गई है। उदयन के राजमंत्री योगंधरायण ने उदयन के सिंहासन प्राप्ति के संदर्भ में एक ऋषि द्वारा यह भविष्यवाणी कराई जाती है कि जो राजकुमारी रत्नावली से विवाह करेगा वह विश्व संप्रभुता प्राप्त करेगा। यद्यपि उदयन की प्रधान महारानी वासवदत्ता थी, अतः रत्नावली से विवाह संभव नहीं था, परंतु संप्रभु होने के लिए योगंधरायण ने यह अफवाह फैलाई कि वासवदत्ता जल मरी। सिंह नरेश ने अपनी राजकुमारी को योगंधरायण के पुनर्निवेदन के पश्चात रत्नावली को जहाज से भेजता है, जो दुर्भाग्य से मार्ग में टूट जाता है और उसकी रक्षा उदयन करता है और उसे अपनी रानी बनाकर विश्व सम्राट बनता है। इसी प्रकार बाण ने हर्षचरित में हर्ष को संसार का सफल सम्राट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की घटनाओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें भाग्य की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, पुण्य भूमि का विश्व सम्राट हर्ष का पूर्वज होने की वैताल साधना, राजकीय ज्योतिषियों द्वारा हर्ष के जन्म लक्षणों से विश्व सम्राट होने की भविष्यवाणी करना, राजा प्रभाकर वर्धन द्वारा मृत्यु समाज में सकल भुवन का सम्राट होने का उद्बोधन देना, राज्यवर्धन का संन्यास लेना, कार्णिकुब्ज नरेश गृहवर्मन की मृत्यु और राजश्री द्वारा कार्णिकुब्ज के संरक्षण के निवेदन आदि अनेक घटनाओं द्वारा बाण ने हर्ष को राजपथ के लिए मार्ग प्रशस्त करता हुआ कथा का वितन्वयन करता है। बाण भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमुख इतिहास कृतियों में बाणभट्ट के हर्षचरित का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जीवन चरितकार थे और स्थानवीश्वर नरेश हर्ष 606 से 648 के राज कवि थे। बाण ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित में अपने जीवन का कुछ परिचय दिया है। उनके अनुसार उनका वात्सायन गोत्र विद्या प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बाण की माता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था, अतः उनके पिता ने माता के समान उनका लालन पालन किया। 14 वर्ष की अवस्था से पहले ही वे विद्या में प्रवीण हो गए थे। उन्होंने आचार्य भरभूस के श्री चरणों में विद्या अध्ययन किया था। वे घर लौटे ही थे कि उनके पिता का निधन हो गया, अतः वह धान्य संपत्ति शालीनता और प्रतिभा पांडित्य के होते हुए भी वे कुचक्र में फंसकर घुमंतु जीवन बिताने लगे। इस आवारा जीवन पर उन्हें सदा खेद रहा और जब उनकी बुराई सुनकर सम्राट हर्ष ने उन्हें भुजंगम कहा तो उन्हें अनुभव हुआ कि इस शब्द में सत्य की अभिव्यक्ति है। किंतु बाण को थोड़े ही समय बाद अकल आ गई और वे इस आवारा जीवन को छोड़कर शीघ्र ही अपने घर लौट आए। उनकी बिरादरी ने उनका बड़ा स्वागत किया, विशेष रूप से उनके भाई जगतपति और चचेरे भाई श्यामल ने उनके प्रति विशेष प्रीति प्रकट की। घर आकर वे शांत और स्वच्छ जीवन बिताने लगे। उनके मित्र और हितैषी राजकुमार कृष्ण के सम्राट हर्ष की सभा में उनका परिचय कराया और उनके प्रति जो भ्रांति थी उसे दूर किया। फलतः वे सम्राट हर्ष की सभा के राजकवि नियुक्त हो गए। उनकी रचनाओं में हर्षचरित और कादंबरी लोक प्रसिद्ध है। हर्षचरित एक आख्यायिका और कादंबरी कथा है। आख्यायिका का वर्ण विषय ऐतिहासिक होता है और कथा का काल्पनिक। प्राचीन साहित्य में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और मैमरथी आख्यायिकाएं प्रसिद्ध हैं। बाण ने उनकी पद्धति का अनुसरण किया है। कादंबरी को अधूरा छोड़कर ही बाण स्वर्ग सिधार गए। उनके पुत्र ने उसे पूरा किया। बाण ने हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। उनके पुरखे पुष्यभूति के विषय में उन्होंने लक्ष्मी के वरदान का एक लोक प्रचलित आख्यान लिपिबद्ध किया है। सम्राट हर्ष के विषय में भी उन्होंने इस किंवदंती का उल्लेख किया है कि सूर्यमंडल से दो राजकुमार उतरकर गर्भ में प्रविष्ट होते हुए उनकी माता यशोमती को स्वप्न में दिखाई दिए। बाण ने हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के बचपन, उनके पिता प्रभाकर वर्धन की भयंकर बीमारी, राज्यवर्धन के हुड़ों को पराजित करके वापस आने, मालवा नरेश द्वारा हर्ष के बहनोई मौखरी गृहवर्मन के वध, राज्यवर्धन द्वारा मालव नरेश की पराजय, गौड़ नरेश शशांक द्वारा राजवर्धन की छल से हत्या, हर्ष के गौड़ के विरुद्ध अभियान और बीच में ही विंध्याटवी में राजसी की खोज का मार्मिक वर्णन किया है। उसके बाद उनका हर्षचरित चर्चा समाप्त हो जाता है। इस कथा परिधि में बाण ने अनुपम शब्द शिल्प द्वारा तत्कालिक संस्कृति का सर्वांगीण चित्र खींचा है। बाण के वर्णन अनूठे हैं। उन्होंने राजा, रानियों, सन्यासियों, कापालिकों, तांत्रिकों आदि की संपूर्ण प्रतिभाएं प्रस्तुत की हैं। उनके ग्रंथ समाज के दर्पण हैं। यद्यपि उन्होंने हर्ष के जीवन चरित्र से संबंधित की है, उनके ग्रंथ समाज के दर्पण हैं। यद्यपि उन्होंने हर्ष के जीवन चरित्र से संबंधित समस्त घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है और बीच में ही अपने वृत्त को समाप्त कर दिया है, फिर भी जो कुछ घटनाएं उनके ग्रंथ में उपलब्ध है उनकी अन्य ऐतिहासिक सामग्री से पर्याप्त पुष्टि हो चुकी है। फिर भी उनके ग्रंथ में इतना शब्द जाल और वाकविलास है कि उसने घटनाओं की ऐतिहासिकता को आवृत कर लिया है। कहीं कहीं श्लेषों के आवेश में लेखक की गति मंद हो गई है और वर्णन रूढ़िबद्ध तथा अप्राकृतिक से लगने लगते हैं। लेखक अलौकिक तत्वों के समावेश से भी नहीं हिचकता। बाण का दृष्टिकोण देखने में आकस्मिक घटनाओं के एक क्रम का वर्णन करना नहीं है, जैसे कि वे घटी होगी, परंतु इसके स्थान पर वह नायक द्वारा एक विशेष ध्येय की प्राप्ति, उन घटनाओं सहित जिनका यह निश्चित परिणाम थी, दिखाना चाहता था। हर्ष को सम्राट बनना ही था, यद्यपि उसके जन्म के समय उसकी किंचित मात्र आशा भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह मौखरी सम्राट के एक सामंत मात्र का कन्यान पुत्र था। परंतु उसके पूर्वज पुष्यभूति को स्वयं लक्ष्मी श्री का वरदान मिल चुका था कि वह एक ऐसे राजकुल की स्थापना करेगा जिसमें हर्ष नाम का एक राजा सम्राट बनेगा और वह उसकी परिचायिका होगी। काव्य साहित्य में ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओं दोनों में ही अंत में नायक का एक विशेष स्थिति से संयोग प्रायः उसके अंतिम ध्येय की संलब्धि का प्रतीक होता है, क्योंकि आधिपत्य को लक्षणा से विशेष रूप में लक्ष्मी देवी या राज्य श्री माना जाता था। इसलिए श्रीदेवी के साथ अथवा पार्थिव स्त्री के साथ जो किसी प्रकार लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती थी, संयोग हो जाने को नायक द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति दिखाया जा सकता था। हर्षचरित में नायक की भगिनी लक्ष्मी की प्रतीक है, क्योंकि वह मौखरी सम्राट से विवाह करती है और इस प्रकार सम्राट और सामंत के परिवार की मैत्री को सुदृढ़ बनाती है। बाण के अनुसार उसका वास्तविक नाम राजश्री था, जिसकी पर्याप्त संभावना है, विशेषता इसलिए क्योंकि उसके भ्राताओं में बड़े की संज्ञा राज्यवर्धन थी और यह कोई असाधारण प्रथा नहीं थी, भ्राताओं और भगिनियों को सम्मान रूप वाले नाम दिए जाए। आख्यायिका का केंद्रीय भाग इस प्रकार है कि साम्राज्य पर गौड़, मगध और मालव अवंती संगठन द्वारा आक्रमण किया जाता है। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि मौखरी सम्राट अधिक शक्तिशाली नहीं है। स्वयं सम्राट की हत्या हो जाती है और राज्यवर्धन को भी अभी अभी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राजा बन चुका है, उसका अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए अभियान करता है और मारा जाता है, क्योंकि मौखरी सम्राट का कोई दामाद नहीं था। साम्राज्य का आधिपत्य उसी पर संक्रांत होगा जो सामर्थ्यपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है, परंतु युद्ध का संचालन अपने सेनापतियों को सौंपकर स्वयं अपनी भगनी के त्राण के लिए चला जाता है, जो कि आक्रमण के पश्चात जंगल में निष्क्रमण कर रही थी। बाण युद्ध के विस्तृत वर्णन में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। वह हर्ष और उसकी अभागिनी भगिनी राजसी के मिलन तथा राजलक्ष्मी की प्राप्ति पर अपने वर्णन को समाप्त कर देता है। इस प्रकार और संभवतः ऐतिहासिक सत्य का भी अत्यधिक अपक्रमण, जैसा कि आधुनिक पाठक समझेंगे, न करके बाण अपने पाठकों को यह स्पष्ट कर देता है कि हर्ष वैध रूप से साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, यही उसका मूल ध्येय था। हर्ष सहित की घटनाएं। इतिहास परंपरा के लेखकों के लिए इतिहास मात्र घटनाओं का अर्थहीन क्रम नहीं है, अपितु राजनैतिक संबंध, युद्ध, दरबारी षड्यंत्र के पीछे होने वाले कारणों की विवेचना है। विभिन्न प्रकार के कार्यों, विशेषतः राजनैतिक कार्यों के कारणों की अन्वेषण है। तो तत्कालीन घटनाओं और चरित्रों के अंतः तल में चलती रहती है और एक घटना के रूप में घटित होती है। इन अंतःतली घटनाओं के अभियान से के लिए मानवीय जीवन के चार पुरुषार्थ के लक्ष्याधीन क्रियाएं होती रहती हैं। इसी को भारतीय शास्त्रों में फल कहा गया है और ऐतिहासिक वर्णनों में क्रमागत एवं समन्वित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में लक्ष्य की उपलब्धि फलागम का वर्णन अंत में किया जाता है जो नायक द्वारा प्राप्त होता है। विभिन्न घटनाओं चरित्रों में इतिहासकार उन्हीं घटनाओं का चयन करता है जिससे वह अपने संभावित लक्ष्य का विवेचन कर सके। तथ्यों के विकास का तार्किक प्रस्तुतिकरण 5 चरणों में हुआ है। प्रारंभ और अंत के मध्य प्रयास, प्रत्याशा एवं निश्चयन का क्रम होता है। हर्षचरित में हर्ष का थानेश्वर एवं कन्नौज के सिंहासन को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य फल है। बाण ने इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर कथा को विभिन्न आनुषांगिक घटनाओं के मध्य नियोजित किया है। हर्षचरित में 5 चरण इस प्रकार है। पुष्यभूति की कथा प्रारंभ, हर्ष का भव्य जन्मोत्सव प्रयास, प्रभाकर वर्धन, ग्रहवर्मन एवं राज्यवर्धन की मृत्यु प्रत्याशा, राजश्रेय की मुक्ति निश्चयन तथा अंत में हर्ष को राज्य सिंहासन की प्राप्ति। इस वर्णन में हर्ष ने काल क्रमानुसार घटनाओं का वर्णन करके अपने लक्ष्य को घटना क्रमानुसार प्रस्तुत करने का विधान किया है। घटनाओं का विश्लेषण। डॉक्टर पाठक ने बाण के हर्षचरित में वर्णित विभिन्न घटनाओं एवं चरित्रों के विश्लेषण के संबंध में लिखा है कि हर्षचरित के मुख्य चरित्रों के विश्लेषण से बाण के अभिप्राय हर्ष को सिंहासन प्राप्ति प्रदान करने के तथ्यों के वितन्वयन में बाण ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वह एक स्वाभाविक एवं शिष्ट निष्कर्ष ज्ञात होता है। बाण ने पुष्यभूति को वर्धन वंश के आदि संस्थापक के रूप में कल्पित किया है जो महान शिव भक्त था। पुष्यभूति द्वारा भैरवाचार्य नामक दक्षिणात्य महाशय की सहायता से बैताल साधना से लक्ष्मी का भूमि से प्रकट होकर यह वरदान देना कि तुम महान राजवंश के संस्थापक बनोगे, जिससे हरिश्चंद्र के समान सर्वद्वीपों का भोक्ता हर्ष नाम का चक्रवर्ती जन्म लेगा। यह हर्ष के पक्ष में बाण का वर्णन सुनियोजित लक्ष्य का प्रथम चरण है। पुष्यभूति के चरित्र की यह महत्वाकांक्षा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हर्ष का संस्थापक बनूंगा, वैताल साधना के माध्यम से लक्ष्मी द्वारा वरदान देना हर्षचरित का लाक्षणिक और प्रतीकात्मक वर्णन है। रानी यशोवती के गर्भ में चक्रपाणि विष्णु के रूप में गर्भ का धारण करना, स्वप्न का देखना, हर्ष के जन्म के समय ज्योतिषियों द्वारा यह भविष्यवाणी करना कि मानधाता के बाद आज तक किसी ने भी इस प्रकार के चक्रवर्ती योग में जन्म नहीं लिया, आपका यह पुत्र चक्रवर्ती चिन्हों से युक्त है आदि भविष्यवाणियां कराना हर्ष के भावी सिंहासन प्राप्ति का प्राथमिक संकेत है, जिसे बाण ने स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। यद्यपि हर्षचरित में हर्ष के ही चरित्र के वर्णन का प्रसंग है, परंतु जहाँ हर्ष के पूर्वजों का उल्लेख है वहाँ राज्यवर्धन का भी उल्लेख है। वहाँ बाण ने राज्यवर्धन के जन्मोत्सव के प्रसंग को साया स्पर्श नहीं किया है। हर्ष के जन्मोत्सव का जो भव्य वर्णन बाण ने किया है वह उसके महान होने के लक्षणों से युक्त वर्णन है। प्रभाकर वर्णन के चरित्र वर्णन में बाण ने जहाँ उसके सैनिक अभियान का वर्णन किया है, वही प्रभाकर वर्णन के आशा अभिलाषा और जीव की उपलब्धि, हर्ष का जन्म, माना है। हर्ष के प्रति प्रभाकर वर्धन का आकर्षण उसके मृत्यु संबोधन से ज्ञात होता है, जहाँ मरणशील पिता यह कहता है कि हे पुत्र, तुम महा सत्व हो, तुम सत्ताधारियों में श्रेष्ठ हो, कुल के दीपक हो, पुरुषों के सिंह हो, यह पृथ्वी तुम्हारी है, राजलक्ष्मी ग्रहण करें, आदि कथन भी हर्ष को सिंहासन के लिए निर्देश है। राज्यवर्धन जब कवच पहनने की आयु प्राप्त कर चुका था, प्रभाकर वर्धन ने उसे हूणों से युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय हर्ष की आयु लगभग 14-15 वर्ष की थी। राज्यवर्धन के साथ वह कुछ पड़ाव तक पीछे पीछे गया, परंतु शिकार खेलने की रुचि के कारण वह पीछे रह गया। इसी समय कुर्गक हर्ष को उसके पिता प्रभाकर वर्धन के रुग्णता की सूचना देता है। हर्ष राजधानी लौट आता है और प्रभाकर वर्धन युद्ध में रत है। हर्ष का राजधानी में उपस्थित होना और राज्यवर्धन का उत्तरापथ में युद्धरत होना और पिता की मृत्यु की निकटता आदि सभी घटनाएं पूर्णतया बाण द्वारा नियोजित हैं। हर्ष राज्यवर्धन को बुलाने की सूचना देता है। इसी अवधि में पिता की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन राज्यवर्धन के विषय में अनेक प्रकार का विचार करता है। यहाँ बाण ने राज्यवर्धन के जीवन की तुलना बुद्ध के जीवन से की है। कि कहीं राज्यवर्धन भी युद्ध का आचरण न कर बैठे, वल्कल न पहन ले, किसी आश्रम में न प्रविष्ट हो जाए, किसी पर्वत की गुफा में न चला जाए, संसार से विमुख न हो जाए और आती हुई राजलक्ष्मी से विमुख होकर वैराग्य न धारण करे, तो यह परान्मुख न हो जाए आदि विचार हर्ष करता है, जो ब्राह्मण बाण की कल्पना है, अर्थात वह राज्य से विमुख हो जाए। बाण का यह राज्य के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्ति भी हर्ष के राज्य सिंहासन का मार्ग प्रशस्त करती है। तृतीय चरण में राज्यवर्धन जब राजधानी लौटकर शोक संतप्त है और कहता है कि मेरी इच्छा आश्रम स्थान में चले जाने की है, तुम हर्ष राज्य भार ग्रहण करो। यह सुनकर हर्ष उत्तर न देकर मुंह नीचे किए बैठा रहा। राज्यवर्धन जब इस प्रकार बोल चुके, तब पहले से ही सहजे हुए वस्त्र कर्मांतिक में रोते हुए वल्कल प्रस्तुत कर दिया। इसी समय राजसे का संवादक नामक परिचायक गृहवर्मा की हत्या का समाचार देता है, जिसे सुनकर राज्यवर्धन ने हर्ष से कहा, पृथ्वी और प्रजा को तुम संभालो, मैं तो भक्ति व कुल विनाश के लिए जाता हूँ। यहाँ भी हर्ष युद्ध में विरत दिखाया गया है और हर्ष एक दिन आश्रम स्वप्न देखता है कि कुंतक से अपने अग्रज राज्यवर्धन की हत्या का समाचार सुनता है और प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर होता है। चौथे चरण में हर्ष को राजसीय के विंध्य अटवी में भागने की कथा और हर्ष द्वारा उसकी मुक्ति की घटना प्रस्तुत कर बाण ने सिंहासन के निश्चय की ओर संकेत किया है। राजश्री का हर्ष से मिलन फलागम की ओर संकेत करता है और कथानक का अंतिम वक्तव्य है। इस प्रकार बाण हर्ष को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में थानेश्वर और कान्यकुब्ज के सिंहासन का फल प्रदान करता है। बाण का अभिप्राय हर्षचरित में घटनाओं का यथारूप लेखन नहीं है, अपितु अपने चरित नायक हर्ष द्वारा एक विशिष्ट लक्ष्य की उपलब्धि है, जिसमें विभिन्न घटनाएं अनिवार्यतः परिणत होती है। राजसी एक लाक्षणिक और प्रतीकात्मक चरित्र है, जिसके मिलन तक की हर्षचरित की कथा पूरी हो जाती है। बाण ने युद्ध के विवरण में कोई रुचि नहीं दिखाई है तथा केवल हर्ष द्वारा राजसी राज्य सिंहासन की प्राप्ति तथा तदंतर उसके द्वारा राज्य प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अपने विवरण में संभवतः सत्य से दूर हुए बिना ही बाण ने घटनाक्रम को काव्य शैली में प्रस्तुत किया है, परंतु एक विशिष्ट तथा यह धातव्य है कि हर्षचरित में नायक की बहन राजसी भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार उचित नहीं प्रतीत होता। काव्य में नायक द्वारा अंत किसी विशिष्ट स्त्री की प्राप्ति से हो सकता है जिस पर व्यक्ति का स्वामित्व हो। बहन के माध्यम से इसके प्रकाशन का उदाहरण सर्वथा अप्राप्त है।